लफ्ज़ रहमान और रहीम को देखें, दोनों के अंदर रहम छुपा है और रहम ही से लफ्ज़ रहम है। रहम कहते हैं मदर यूट्रस को, वूम को, वो जगह जहाँ बच्चा परवरिश पाता है। ये दोनों अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं और दोनों में अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह सुबहाना ताला की रहमत के वजन पर ये दो लफ्ज़ दोनों का वजन फ़र्क है। आइए पहले रहमान को देखें, फिर रहीम को देखें। अगर आप लफ्ज़ रहमान कहें तो जैसे बिस्मिल्लाह की तफसीर में आपको बताया था कि ऊपर उठने का लफ्ज़ है ना, रहमान, फोलान एक बाब होता है, अरबी में 9 बाब हैं। जैसे डिफरेंट आप कह लीजिए कि सांचे हैं जिसमें से ढल ढल के लफ्ज़ निकलते हैं, उसमें से एक लफ्ज़ क्या है, फोलान, रहमान, गतशान, गदबान, सुकरान, सब में एक ही वज़न है। तो जब भी बाब फोलान का वज़न आता है ना, तो नंबर एक इसमें जोश होता है, किसी भी चीज़ के अंदर एग्जेजुरेशन, मुबालगा, वसत। अल्लाह सुबहान तआला को जब हम रहमान कहते हैं तो हम अपनी ज़ुबान में मुबालगा करते हैं, जो अल्लाह को बिल्कुल सूट करता है। अल्लाह सुबहान तआला के लिए लफ्ज़ जब रहमान आएगा तो क्या होगा, कसरत से रहमत। यानी रहमान लफ्ज़ में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, नंबर एक कसरत, यानी हम अल्लाह के रहम की कसरत को बयान करना चाहते हैं। फिर ज़ोर, इंटेंसिटी, कसरत क्या होती है, क्वांटिटी या उसका मेजॉरिटी कह लें, ज़ोर, शिद्दत। फिर इसी तरह इंतहा, और फिर इसका एक चौथा मानी होता है इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। आसमान से बातें की, तुमसे सितारे तुम्हारे लिए तोड़ लाऊं, ये झूठ होता है, लेकिन अरबी ज़ुबान में मुबालगा, झूठ नहीं होता। रहमान में एक वक्ती उनसर है, क्योंकि जब भी उबाल उठता है, जोश उठता है, तो वो वक्ती होता है, ठीक है, एक्सट्रीम भी है, आर्जी होना भी है, और अभी इस वक्त हो रहा है। बस आप देखिए, आप किसी को कहते हैं कोई साबिर है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो इस वक्त भी सब्र कर रहा है, कभी सब्र किया होगा। फलां सखी है, होगा कभी, इस वक्त तो नहीं वो कर रहा। लेकिन अल्लाह सुबहान तला के लिए जब आप लफ्ज़ रहमान बोलते हैं तो इसमें एक बात छुप गई कि वो इस वक्त भी रहमत कर रहा और एक्सट्रीम पे रहम है उसका, और जिस वक्त बंदे को ज़रूरत पड़ती है ना, उसी वक्त उसकी मदद करता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि कोई भूखा है, आपके पास आए खाना मांगने, आप कहते हैं अगले हफ्ते आना खाना दूंगा, तो उसको गुस्सा आएगा कि प्यार आएगा आपके ऊपर। तो अल्लाह सुबहाना ताला के लिए जब लफ्ज़ रहमान है ना, तो आप इसका एक जुमला और भी पढ़ेंगे, हंगामी हालात में, एमरजेंसी कंडीशंस में फौरी मदद के लिए आने वाला। मसलन आप देखिए कि एम्बुलेंस को फ़ोन करें, वो कहती है कल आऊँगी, तो मरीज़ तो मर चुका होगा। फायर ब्रिगेड वालों को आप कॉल करें, जल्दी आए, आग लग गई, तो वो कहते हैं 2 दिन का बाद का टाइम ले लें, फ़ायदा नहीं होता ना। तो इंसान की ज़िंदगी में बास हालात ऐसे आते हैं, उसको फौरन हेल्प चाहिए होती है। अल्लाह ताला रहमान होने के नाते वो फौरन मदद करता है, अभी अभी उनका मसला हल कर दो। एक शख्स आपको कहता है कि खाना दे दो, यानी आपके शौहर कहते हैं खाना दे दो, तो आप कहते हैं आए ज़रा बताएं वो अगले हफ्ते पार्टी में क्या पकाएंगे, मेन्यू ना सेट कर लें, तो गुस्सा आएगा ना उनको। आप कहेंगे कि मैं आपको, वो बेगम मुझे अभी खाना दो, बाद में बात करेंगे। तो रहमान लफ्ज़ में इंस्टेंट, फौरन, राइट अवे। और आप सब ने अपनी ज़िंदगी में ये बहुत दफ़ा देख लिया होगा, सारे सहारे जिन पे आपकी नज़रें होती हैं ना, वो टूट जाते हैं, लेकिन फिर आखिर में अल्लाह ही काम करता है। आप कहते हैं आज फिर अल्लाह ही मेरे काम आ गया। इसके बरक्स रहीम सिफत है, हमेशगी है इसमें, और ज़रूरी नहीं कि इस वक्त भी वो कर रहा हो। यानी अगर अल्लाह ताला सिर्फ अर रहमान होते ना, तो हमेशगी ना होती उसकी हमारे ऊपर रहमत में, और अगर अल्लाह सुबहान तला रहीम ना होते, तो ज़रूरी नहीं कि हमें उसकी रहमत हमेशा ही मिलती रहती। और रहमान के अंदर अगर जोश है तो वो सबके लिए, आप कहते हैं ना बाज़ दफ़ा जोश में आके लोग सब चीज़ें बांट देते हैं, सबको खिला पिलाते हैं, लेकिन जो समझदारी और अक्लमंदी से खिलाते हैं वो सिर्फ अपने बच्चों बीवी को खिलाते हैं। अल्लाह सुबहान तआला के रहमान होने का फ़ायदा कुफार को हो रहा है दुनिया में, फाजिरों को हो रहा है, नाफरमानों को हो रहा है। आप कहते हैं लोग इतने गुनाह करते हैं, अल्लाह को गुस्सा नहीं आता, तो आज समझ आ गई कि वो चूंकि रहमान है, उसको गुस्सा कैसे आ जाए।
ठीक है।
तो फिर अल्लाह ताला की रहीमी की सिफत कब है? इसका इजहार होगा कयामत के दिन, क्योंकि अल्लाह सुबहान ताला मुस्तकिल तौर पर जिससे रहम करेगा ना, वो अपने ईमान वाले बंदे हैं। अरबों में लफ्ज रहमान नहीं था, इसको नहीं जानते थे। लफ्ज अल्लाह को वो जानते थे, लेकिन लफ्ज रहमान को वो नहीं मानते थे। इसीलिए आप पढ़ेंगे आगे जाकर, जब उनसे कहा जाता है कि सजदा करो रहमान को, तो कहते थे वमर रहमान। इसी तरह सूरत अंबिया 36 में आता है वहुम बि जिक्र रहमान ही हम काफिर हूं, कि वो तो रहमान के जिक्र के इनकारी हैं, उनको तो ये नाम अच्छा ही नहीं लगता। अल्लाह ताला ने ये दोनों नाम इस्तेमाल करके अपनी रहमत को बताई। तो थोड़ा सा अल्लाह की रहमत को डिस्कस करते हैं, क्योंकि रहमान और रहीम में उसकी रहमत छुपी हुई है। उसने आपके मेरे लिए बहुत कुछ बना के रख दिया इस दुनिया में कि हम उसकी रहमतों से फ़ायदे उठाएं। फिर इंशाल्लाह ताला आपको मालिक और मुल्क का समझ आएगा फ़र्क। आप देखिए कि सबसे बड़ा उसका रहम क्या है, अर रहमान अल्लमल कुरान। इस कायनात पे अल्लाह ताला का सबसे बड़ा रहम इस कुरान का इल्म है, बोलना सिखाया, अल्लमहुल बयान। फिर आप देखिए कि बच्चे के दुनिया में आने से पहले माँ के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देना, ये अल्लाह का रहम है। आप देखिए ना कि रहम की वजह से ही तो माँ अपने बच्चे को उठाए उठाए 9 महीने फिरती है ना। जब आप किसी को रहमान कह रहे हैं या रहीम कह रहे हैं या उसके रहम की बात करते हैं, तो फिर उसमें वो सारी ही सारी चीज़ें आएंगी साथ ही साथ। मसलन कैसी चीज़ें आएंगी, आप देखिए कि माँ के पेट के अंदर बच्चे की कैफियत है ना, उसको जहन में ले आइएगा, आपको इंशाल्लाह इससे बात समझ आएगी। माँ के पेट में बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा होता है उसको सामने लिखें पॉइंट्स में, तो आपको अल्लाह का प्यार नजर आ जाएगा। नंबर एक, माँ के पेट में बच्चे की सारी जरूरियात पूरी होती है ना। आप जानते हैं कि खून के जरिए बच्चे तक खुराक तक पहुंचती है। फिर एक दूसरा, माँ के पेट में बच्चे के साथ कहते हैं किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होता। फिर इसी तरह तकलीफ बच्चे को होती है कभी पेट में, दर्द माँ को हो रहा होता है। डॉक्टर्स कहते हैं ना आपको कोई अनयूजुअल पेन तो नहीं, अच्छा इसके अंदर बेबी नॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल बेबीज को जब मदर्स होल्ड करती हैं तो माओ को ही तकलीफ हो रही होती है ना। फिर आप देखिए कि एक चौथी चीज होती है मदर वूम में, कि हर तरह से माँ की मोहब्बत मिल रही होती है बच्चे को। लिफ्ट होता है ऐसे बच्चे को देखें, फीटस को, तो कैसे छोटा सा बच्चा घूमा फिरा होता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि माँ के पेट में बच्चा महफूज होता है। माँ सोए, माँ जागे, माँ पैदल चले, सीढ़ियों में उतरे चढ़े, भागे दौड़े, बच्चा खैर खैरियत से। माँ खुश है या गमगीन है, अंदर बच्चा मौजें कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से कह लीजिए कि अल्लाह ताला के लिए सिफत रहमान और रहीम खूबसूरत जुमला है, फसाहत बलागत के एतबार से। लफ्ज़ रहमत में अमूमन चार चीज़ें आती हैं, लिखिएगा। नंबर एक, मोहब्बत, लव। नंबर दो, ख्याल रखना, केयरिंग। और तीसरा मानी तो बड़ा ही खूबसूरत है, जिस तरफ देखे वही दिखे। बंदे को हर तरफ अल्लाह दिखता है। और चौथा क्या है, मोहब्बत में लिपटा होना, मोहब्बत में लिपटा होना। तो जब अल्लाह ताला अपने बंदे को माँ के पेट में ये सारा कुछ अता कर देता है, तो उसके बाद बताइए क्या दुनिया में आने के बाद उसको नहीं देगा? तो जब आप रहमान और रहीम की बात करते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि उसके रहमान और रहीम होने के मुख्तलिफ रंग हमें दुनिया में दिखते हैं। सिर्फ ग्लासेस चेंज करने की ज़रूरत है। और मैं अक्सर सोचती भी हूँ और समझती हूँ इसको, कुरान आपकी आईसाइट चेंज कर देता है। आपके ग्लासेस का नंबर जब चेंज हो रहा होता है ना, तो आप बाज़ दफ़ा बोझलपन महसूस करते हैं, कभी नज़र नहीं आ रहा, कभी धुंधला आ रहा है, कभी दूर नहीं आ रहा तो करीब आ रहा है, कभी करीब आ रहा है तो दूर नहीं होता। कभी किसी को अगर ये एक्सपीरियंस हुआ तो कभी फील किया आपने? इस वक्त आप सब मेरे समेत भी, हमारा आईसाइट चेंज हो रहा है, इसलिए घबराइएगा नहीं। ये जो कुरान पढ़ने के और कोर्स ज्वाइन करने के शुरू के दिन है ना, ये बहुत मुश्किल लगता है बंदे को, समझ नहीं आ रहा, अनडिसाइडेड है, एक तरफ दिल जम रहा है, दूसरी तरफ आदत नहीं है। तो समझ ले वही वक्त है कि आई साइट चेंज हो रही है, आपका एंगल अब चेंज हो रहा है हर चीज़ को देखने का। अब आप उसके रहम और रहीम की सिफत में जब देखेंगे ना, हर तरफ आपको दिखेगा कि वो आपको फ़ायदा दे रहा है। आपके लिए तो तकलीफ़ों में भी रहमत है। गर्मी क्यों आती है, आपका पसीना बह जाए, ये रहमत है। दुख क्यों आते हैं, दिल क्यों कुजलाता है, ताकि आंखों से पानी निकले और आप अपनी आंखों को साफ कर लें, ये भी रहमत है। सर में दर्द क्यों होता है, क्योंकि पेट में या जिस्म में कोई गड़बड़ हो गई है, जल्दी से चेक करा लो, वरना सर दर्द ना हो आपको, मुझे अपनी आधे से ज्यादा बीमारियों का पता ही ना चले। पेन किलर, पेन्स क्यों होती हैं, ये दिखाती है अंदर कुछ कम गड़बड़ हुई हुई है, जल्दी देख लो जाकर। अगर ये सब ना हो तो इसके बावजूद कि हमें अल्लाह ताला ये सब कुछ देता है, हम कभी भी अपने बारे में भी सही फैसले ना करें। फिर इसी तरह आप एक टॉपिक बना लें, सवाल, जैसे आपको बताया था कि सवालिया जवाबिया तफसीर लिखें आप लोग, तो आप बताइए कि अल्लाह की रहमत का इजहार दुनिया में कैसे हो रहा है। नंबर एक, माँ के पेट से शुरू हो जाता है, फिर उसने दुनिया में आने से पहले माँ के दिल में हमारे लिए प्यार डाल दिया, फिर आप देखिए कि बच्चे का दुनिया में आना, ये कितना एक अजीब एक्सपीरियंस है ना। अगर आपके घरों में बच्चे हैं और आप में से, हम में से हर खुद जब बच्चे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन कभी आपने बच्चे को देखा है कैसे एक फूल का फूल हमारी गोद में अल्लाह डाल देता है, ये अल्लाह की रहमत है। कभी आपने सोचा कि बच्चा जिस कद का बाद में होता है उस कद का दुनिया में आता, जो वेट हमारा बाद में ग्रोन अप होने के बाद सेटल हो जाता है अमूमन, उसी पे आप दुनिया में आते, ये अल्लाह की रहम है। फिर बच्चे की हड्डियों का इतना नरम होना, उसका सर अगर फ्लेक्सिबल ना हो और उसके जिस्म का एक एक अंग उसी रुख से दुनिया में ना आए जिस रुख में अल्लाह ने रख दिया, तो क्या वो बच्चा दुनिया में आ सकता था। ये उसका रहम है कि बच्चे को उसी एंगल से दुनिया में भेजता है जिसमें माँ और बच्चे की सहूलत है। फिर आप देखिए कि माँ के पेट में दूध, बच्चा पैदा हुआ उधर माँ के जिस्म में खींचे पड़नी शुरू हो गई, ये अल्लाह का रहम है। माँ के दिल में जज्बे, वही लावबाली सी लड़कियां जो कभी खुद नहीं उठती, वो बच्चों के पैदा होने के बस होती नहीं है, एक चूं से उठ जाती हैं वो, जो इतने बड़े बड़े अलार्म सुनकर भी नहीं उठती थी, ये अल्लाह का रहम है। ये माँ के दिल में अल्लाह ने प्यार डाला है हमारे लिए। बच्चे कुछ भी कर लें, माएँ नहीं उनको छोड़ती, दुनिया सारी छोड़ती है तो छोड़ जाए, ये अल्लाह ताला का रहम है। फिर इसी तरह से आप देखिए, बाप के दिल में मोहब्बत डाली अल्लाह ने हमारे लिए, ये रहम है। कितना कमाते हैं, अपने ऊपर कितना लगाते हैं, बच्चे के पैदा होने पे जो लाड़ और शौक चाह माँ बाप कर रहे होते हैं, दुनिया का कोई और इंसान कर ही नहीं सकता, किसी के बच्चे को तो बंदा उस तरह कर ही नहीं सकता। फिर आप देखिए हमारी नींद, अब आप वाइट मुझे बताइए घंटे पे कितने बने हैं, ये जो मुझे सारा दिन थक के रात को नींद आ जाती, ये कितना बड़ा उसका रहम है। और फिर अगला उसका रहम, रातों में नींद में मजे के ख्वाब दिखाना, बाज़ बाज़ सुहाने ख्वाब देखते रात गुजर जाती है, फिर नींद पूरी होने के बाद सुबह हमारा उठ जाना, आप देखिए कि नींद का खुमार उतरता है तो लोग ऐसे सुबह फ्रेश चहकते हुए उठते हैं, और जो फिर सो जाते हैं वो सारा दिन मुरझाए फूलों की तरह फिर रहे होते हैं, चलते हैं तो कदम घसीटते हैं, ये सब उसका रहम है। बिस्तर पे लेटे तो आप सीधे हो गए, ये उसका रहम है। बैठना चाहा आपकी कमर यूं हो गई, आज आप एक ऐसा सोफा जिसको रिक्लाइनर कहते हैं चार गुना महंगा ला के रखते हैं घर में, वजह क्या है कि आप जिधर मोड़ेंगे मुड़ जाएगा, फिर भी इतनी मेहनत करके कभी कभी मोड़ना पड़ता है। अगर आपको मुझे उठने बैठने से पहले इतने ही पेज पुर्जे और उसकी नॉब्स घुमानी पड़ती जो हम अपनी कुर्सियों की और सोफों की या बेडों की करते हैं, तो हम कितनी तकलीफ में होते हैं, ये अल्लाह का रहम है। चलना शुरू होते हैं थप 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 पाँव चलने शुरू हो जाते हैं, आपके जिस्म का एक एक जोड़ उसका रहम है। सारी रात जो आप करवटें बदलते हैं, ये उसका रहम है। पता नहीं कौन से फरिश्ते उसने हमारी हिफाजत पे रखे हैं, हम सो जाते हैं वो हमें मक्खियों मच्छरों से और अजीबो गरीब चीज़ों से बचाते हैं, सारा दिन उसका रहम अपने ऊपर महसूस करें। फिर सुबह उठे तो वो सब एक्टिविटीज शुरू हो गई जो कि रात को ख़त्म हो के करके सोए थे, रात को आप कहते हैं सारे काम पूरे हो गए, अगले दिन एक सुबह हल्ला बचता है, सारे बच्चे तैयार होकर के घर फिर गंदा, एक दफा नाश्ता बनाए किचन फिर फैल गया, फिर अल्लाह आपको ताकत देता है, फिर आप रोज करें। देखिए काम कितनी दफा आप कर सकते हैं, मसलन जो लोग फिल्मों ड्रामों के भी शौकीन है वो एक फिल्म कितनी दफा देख सकते हैं, शायद दो तीन चार। तो ये जो जिंदगी की फिल्म आप रोज सोचते हैं, क्या आप कभी बोर नहीं हुई, रोज सुबह उठ के नाश्ता बनाओ, रोज उठ के सुबह चाय बनाओ, नहीं, ये अल्लाह का रहम है कि जो आपकी, आपके बच्चों की, आपके घर वालों की जरूरतें थी, अल्लाह सुबहान तला ने आपके लिए की। फिर देखिए सूरज आ गया, आप सोचे आप सुबह उठे सूरज ही ना हो, ये नहीं कहा ठहरो ठहरो अभी आ रहा है जरा सूरज लेट हो गया, नहीं, अल्लाह ने दे दिया आपको। फिर इसी तरह से आप देखिए खेतियों का चलना और बादलों का और समंदरों का, ये सब अल्लाह का रहम है। इस कायनात का एक एक सिस्टम अल्लाह के रहम पे चल रहा है। रात हुई तो चांद आ गया, रात गई तो सूरज आ गया, सितारों से रास्ते मालूम कर रहे हो, गर्मियों से दिल भर गया तो बहार और खिजां और फिर सर्दी आ गई। फल, आप जो फल खा के आते हैं या बैठते हैं खाते हैं, कभी उसको हाथ में लेकर के अर्रहमान अर्रहीम, आप कहते हैं विटामिन सी है इसमें इसलिए ऑरेंजेस खाओ। आपने कभी विटामिन सी की वैसे गोलियां भांगी हैं? इतनी मोटी एक ऑरेंज कलर की गोली होती है पाकिस्तान में, पानी में लोग घोल के पीते जी विटामिन सी पी रहे हैं, हलक भी छिल जाता है। आपकी ऑरेंजेस की जगह वहां विटामिन सी की गोलियां लटकती नहीं, अर्रहमान अर्रहीम। वो कहते बंदे को टेस्ट भी था, चले टेस्ट बहुत अच्छा हो, खुशबू अजीब होती, बदबू होती, और आप तो अभी ऑरेंज हाथ में लेते हैं तो आपको खुशबू आती है। गंदम का एक एक दाना अल्लाह थैलियों में पैक करके आपके सामने ला के पेश करता है। सूरत अब्बस आयत 24 में अल्लाह ताला कहते हैं फल यंजुर इल इंसान इला तामी, इंसान को चाहिए कभी अपने खाने को तो देख ले। ये एक गेहूं का दाना आप हाथ पे रखें जरा और फिर पूछें कि ये कितने मरहलों से गुजर कर आपके दस्तरखान पे आया। ये रहमान है, कड़वे होते गंदम पकड़ते खाते दे, जब तैयार करते तो कड़वे होते, कितने लोगों को अल्लाह ने उसमें तैयार किया, बादल हवा सूरज पकड़ के फिर कहीं आपकी मेरी फसलें तैयार होती हैं। फिर जानवर, ये जो दूध की चाय पी आपने अभी, ये कहाँ से आया? चाय की पत्ती कहाँ से आई? ये चीनी कहाँ से आई? और सबसे बड़ी नेमत जो मैं अपने दिल में सोचती हूँ वो पानी है, गंदगी को भी धो देता, बदबू भी ख़त्म, खाना हजम नहीं हो रहा, पानी पी लो खाना हजम, चाय में पानी, कपड़े गंदे हैं धो लो, घर में पानी ना हो तो आप बताइए क्या क्या रुक जाए। ये उसका रहम है, ये सारी कायनात अल्लाह की रहमतों का एक मजहर है। अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र सिखाया है, सूरत नाहल जो आप इंशाल्लाह काफ़ी अरसे बाद ही पढ़ेंगे, बिल्कुल कुरान के मिड में है, सूरत नेम भी कहते हैं, आयत उसकी 65 और 66 में अल्लाह ने हमें सबको गौर सिखाया, वइन लकुम फिल अनाम इला इब्रा, ये जानवरों के पेटों में से क्या निकालता हूँ, एक तरफ गोबर है एक तरफ खून है, बीच में से दूध की नहरें बहाता हूँ, फलों में से शहद की मक्खियां हैं और कहीं कुछ है, ये सब कुछ उसका है। तो क्या पता चला कि ये कायनात का हुसन अल्लाह की रहमत है। फल देखिए, सब्जियां देखिए, मैं कल गौर कर रही थी, कल नहीं परसों, गाजर पे, मूली पे, आप में से सभी ने देखा होगा उगती पकती, तस्वीरों में देखी होगी, आपको तो मूली मिट्टी में से निकलती है, ये उन सब्जियों में से जिसके पत्ते ऊपर होते हैं और सब्जी अंदर है, गाजर, मूली, शकरकंदी, आलू, शलजम, और क्या लेके आइएगा आप देखिए। मैंने, मुझे बचपन का मंजर, हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा बैकयार्ड था, तो वो गांव से जो लोग आते थे रहने के लिए तो वो कभी कभी सब्जियां लगाते थे, मुझे वो मंजर आज भी आंखों के सामने रखता है कि एक मट्टी में से वो यूं बड़े आराम से खींच के मूली निकालते थे, दूध की तरह चमकती मूली मट्टी में से निकलती है। हम सफेद कपड़े पहन के कभी मट्टी के पास ना जाएं, और जो उनकी शेप, और अगर आप कहते एक खास एंगल से ना निकाले तो टूट जाती है, नरमी से निकाले तो निकल आएगी, जोर लगाएंगे ना तो पत्तों का डंडल आपके हाथ में आएगा, गाजर अंदर, ये किसने किया? ये सब अल्लाह का रहम है। क्या इंसान की जुबान बंद नहीं हो जाती अल्लाह की तारीफें सुनने के आगे? फिर आप देखिए कि हम इतना कैजुअल लेते हैं, फिर हमें अल्लाह का रास्ता इतना मुश्किल लगता है, एहसान चढ़ाते हैं, सच्ची जो बात है, कभी तो अल्लाह ने हमें ये जुमला भी नहीं बोला। फिर मैं सोचती हूँ अल्लाह का रास्ता ही मुश्किल है, उसी में कुर्बानियां मुश्किल है, उसी के लिए जमना मुश्किल है, उसी के लिए सफर मुश्किल है, उसी के लिए एटीट्यूड के साथ कहते हैं टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, करेंगे क्या हम? यहां से मैं उठ गई तो मैंने क्या दुनिया को सिखाना है? क्या मैं दुनिया को जाके कुकिंग सिखा दूंगी? क्या कोई एक काम इस काम से ऊपर दिखता? तो मेरा फर्ज क्या है? सारे कामों को पीछे डाल के इसको ले लो, कहला ये है वो काम जो तू हर एक से नहीं लेता, एक ही दरख्वास्त है कि इसको तू कबूल कर और आखिरी दम तक करने वाला बना दे। बस यकीन करें, ये आपके साथ इस दफा खुद पढ़ाने का जो फैसला है, ये मेरा अपना फैसला है। दुनिया में माशाल्लाह ये सबीलुल जन्ना जो आप ही के शहर में था, बीसियों कोर्सेज चल रहे हैं, डिफरेंट इससे भी ज्यादा है माशाल्लाह, और हमारे अपने एडमिन्स मुझे यही कहते हैं कि उस्ताद साहब वही करवाएं, फिर आप ऊपर की चीजें नहीं देख सकेंगी। पर मुझे ऐसे लगता नहीं, मेरी प्यास का फिर वह कैसे बुझेगी? तो मैंने कहा नहीं, मुझे खुद कराना है इस दफा, नहीं मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगी, मैं कोई नई चीज कर दूंगी कुछ भी, पर मुझे तो मिले ना, क्योंकि मुझे जो बताने से देने से मुझे मिलता है, और जाहरी बात है कि मैं उसके लिए मजीद मुतालिया करूंगी, वो मैं वैसे तो नहीं कर सकती। तो ये आप मुझे मौका दे रहे हैं सीख कर, तो हमेशा अपने लिए ये तड़प रखें, बहुत अपने आप को छोटा रखें, लो प्रोफाइल। आप काम करें अपने लिए, खुद ढूंढ के लाएं, घर बैठ के सोचें क्या क्या चीज़ें मुझे अल्लाह की रहमत लगती हैं, उसको लिखें अपने नोट्स में जगह, एक लाइट साइड पे कॉलम छोड़ दें। आपको बच्चे की कुलकारियाँ भी रहमत लगेगी, शौहर का प्यार भी रहमत लगेगा, और सब कुछ रहम लगेगा, और सबसे बढ़कर आप देखिए सबसे बड़ा उसका रहम, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सूरह अंबिया 107। क्या नबी की ज़ात रहमत है। लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन सूरह आले इमरान में आता है कि अल्लाह ने इंसानियत को इतना प्यारा उस्ताद और मुअल्लिम दे दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की रहमत को हमारे सामने ले आती हैं। हिदायत दी उसने, ये रहमत है, ये कुरान रहमत है, कायनात की हर चीज़ उससे बेहतर है। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत 32 में आता है, व रहमत रब्बी का खैर मिम्मा यजमाउन, तेरे रब की रहमत उन सारी चीज़ों से बेहतर है जो ये लोग जमा करते हैं। सच बताएं अगर इस वक्त आप यहाँ ना होते या जो नहीं हैं उनको इस रहमत का अंदाज़ा भी हो सकता था, किधर से उठे तो कहीं और गए तो क्या किया। सिर्फ ज़रूरियात हैं, रहमत कोई नहीं है। वो रहम ये है कि बंदे को अपने रब से और रब को उसके बंदे से प्यार हो। अब अगली आयत में इसके रहम का एक अमली इजहार, जो नागुज़ीर था यानी जिसके बगैर गुजारा नहीं था, और वो क्या है कि अल्लाह के रहम की दलील क़यामत का आना। इसीलिए फरमाया मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। थोड़ी सी बात करते हैं लफ्ज़ मालिक पे। देखिए दो लफ्ज़ हैं, एक होता है मालिक और एक होता है मलक, लिख के देख ले। मालिक कौन है? मालिक भी है, इख्तियार भी है तब्दीली का, लेकिन जो मलक होता है ना, मलक बादशाह कहते हैं जिसको उर्दू में, मलकियत तो होती है मगर इख्तियार नहीं होता। ये जो बचपन से हम पढ़ते हैं ना, बादशाह था वो जो चाहता था करता था, तो ये गलत है। बादशाह सब कुछ नहीं कर सकते। बाज़ जो लीडर्स आपको दिख रहे होते हैं ना सामने, वो खुद नहीं कर सकते, दूसरों की ज़्यादा अथॉरिटी होती है। अल्लाह सुबहान तआला के लिए मलक नहीं आया। अगर मलक आता ना तो मतलब क्या था कि इस कायनात पे मलकियत तो उसकी है पर इख्तियार कोई नहीं उसका। सूरज तो बना दिया लेकिन सूरज उसकी मर्जी से नहीं आता। अल्लाह ताला के लिए लफ्ज मलक भी है और मालिक भी है, क्योंकि मालिक तो वो है ही है लेकिन साथ पूरे का पूरा इख्तियार भी है। लफ्ज मलक के ना तो ग्लैमर ज्यादा है, खूबसूरत लगता है, बादशाह, पर इख्तियार कम है। मालिक तो आप पेन के भी हो सकते हैं, आप पांच मरले के घर के भी मालिक हैं और आप पांच कनाल की कोठी के भी मालिक हैं। लफ्ज़ मालिक में ग्लैमर नहीं है पर इख्तियार ज़्यादा है, इसलिए अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ यहाँ मालिक आया है। इमाम बिजावी हैं, कहते हैं कि मालिक का मानी क्या है, अल-मुतसर्रिफ, वो ज़ात जो अपनी मलकियत की चीज़ों में जिस तरह चाहे तब्दीली कर दे, इसकी कुदरत रखती हो। एक बात फिर बोल देती हूँ, मालिक कौन है जो अपनी चीज़ों में जब चाहे तब्दीली कर दे, उसको इस्तेमाल करे, छोड़ दे, तोड़ दे। अब देखिए अल्लाह मालिक है, तभी तो जब चाहेगा क़यामत को कुन कहेगा और कायनात को ख़त्म कर देगा, ठीक है। फिर इसी तरह से उसको वो कब्ज़ा हासिल हो कि कोई उससे वो चीज़ छीन ना सके। अल्लाह ताला ने मालिक के कायनात होने की दलील यहाँ दी है बदले के दिन पे। वैसे तो वो इस दुनिया में भी मालिक है, क़यामत के दिन की बात क्यों की गई? लफ्ज़ यौम देखिए उर्दू में भी बोलते हैं, यौमुल जुमा, यौमुल ईद, इसकी जमा अय्याम, यहाँ यौमिद्दीन आया। इससे मालूम हुआ कि वो अमल का दिन नहीं बदले का दिन है। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, 50,000 साल जितना एक दिन होगा वो। ये सूरत मारिज में गालिबन हम पढ़ेंगे 29वें पारे में। क़यामत का दिन अपनी जगह एक फुल स्टोरी है, उस दिन क्या होगा। सूरत मोमिन आयत 7-16 में अल्लाह ताला कहते हैं, हुम यौमहुम बारिज़ूना ला यख़्फ़ा अलल्लाहि मिन्हुम शैय्यन, जिस दिन सब लोग अल्लाह के सामने मौजूद होंगे और इनकी कोई बात अल्लाह ताला से छुपी भी नहीं होगी। फिर क्या वो पूछेगा, लिमनिल मुल्क अल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है? कोई है ही नहीं जो बोले, तो खुद ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, बस अल्लाह की होगी जो यकता और गालिब है। और अल यौम तुज्जा कुल्लु नफ्सिम, माँ भी माँ का सबक, आज के दिन हर बंदे को वही बदला मिलेगा जो उसने किया। ला जुल्म अल यौम, आज के दिन कोई जुल्म नहीं है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। क्या पता चला, मालिक यौम दीन जो है ना, यही है वो दिन जिसको बदले और सजा का दिन कहते हैं। दीन लफ्ज क्या है, दाना या दीन? इसे देखिए आगे आप इसी सूरह बकरा में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तीसरे पारे में आयत दैन। यहां बस हल्की सी वजाहत ले लीजिए, दैन कहते हैं कर्ज को, लोन। तो फिर क्यामत के दिन को यौमुद्दीन क्यों कहा गया? हम कहते हैं बदले का दिन, किस चीज का बदला? जो अमल करते हैं उनका बदला। कर्ज किसी को दिया तो उसको वापस करना होता है ना। इसी तरह दुनिया में मैंने और आपने अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को इस्तेमाल किया, लेकिन वो हक नहीं दे सके जो नेमतों को पाकर देना था, तो उसके लिए अल्लाह ताला हमसे क़यामत के दिन वसूली करेंगे। लफ्ज़ वसूली बड़ा आसान है इस जुमले को समझने के लिए, ये वसूली का दिन है। जैसे आप देखिए, मिसाल देती हूँ, कोई भी जगह है ना, आप किसी भी जगह गए, आपने उनके साथ अपना मामला रख लिया, अब आपका हिसाब किताब चलता रहता है, आप उनसे, उनको भी पता है कि आप देंगे, वो भी आपसे नहीं मांगते, कभी मांगते हैं कभी नहीं मांगते, लेकिन एनुअल चेकिंग होती है एंड पे, या किसी साल के एंड पे या टर्म के एंड पे, चलो भाई सारे सारी टर्म में ये ड्यूज आपके नाम पे हैं, आप पूरा साल आते रहे, आपने ये नहीं दिया, वो नहीं लिया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, दीजिए। आखिर में हिसाब होता है ना चुकता करना, फिर उस दिन वसूलियाँ होती हैं, जैसे टैक्स रिटर्न्स जिसको आप उर्दू इंग्लिश में समझिए, पूरे साल के अकाउंट्स को पाइल अप करके फिर वो पेश करते हैं कि ये सारा साल कमाया और ये टैक्स बनता है। मैं और आप साथ साथ छोटे छोटे मामले अल्लाह से करते कराते रहे, पर क़यामत के दिन पूरी चुकती होगी, जो डिजर्व करते थे ये पकड़ो, और जो नहीं मिला उसके लिए पूछ लो, फिर तकलीफें थी सबर किया, चलो फरिश्तों जाओ इनको जन्नत दे दो। तो बदले का दिन इंसान की जिंदगी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। हमें पता हो ना हमें किसी ने पूछना है तो हम जरूर फिक्र करेंगे। फिर आप देखिए, दुनिया में बुरा आदमी है दौलत में खेल रहा, और नेक शख्स है और बेचारा जूतियां पटख रहा, जुल्म हो गया ना। मालिक यौमिद्दीन कहता है इधर आओ, दोनों का हिसाब पूरा करूं, इधर आ भाई, तूने क्या ये किया है? इतनी खराबियों के बाद जो तुझे इतनी दौलत दी थी, तू क्या समझा कि तुझे कोई पूछेगा नहीं? जवाब दे। और वो बेचारा मजलूम सा खड़ा है, उधर इधर आओ, ये नहीं मिला वो नहीं, वो फरिश्तों जाओ इसको दूर से जन्नत दिखाओ। फमे या अमल मिसकाल जर्रत खैर यरा और शर यरा। ये दुनिया अधूरी है आखरत के बगैर, ये जुल्म लगती है। यहाँ किसी को दौलत मिली, किसी को नहीं मिली, कोई खूबसूरत है कोई बदसूरत है, किसी को बच्चे मिले किसी को नहीं मिले, अधूरी है ये कहानी पूरी नहीं हुई, इसकी फाइनल किस्त क़यामत के दिन होगी। इसलिए अभी ना सोचो कि तुम्हें क्या मिला और क्या नहीं मिला। कुरान में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और कुरान का अल्लाह ताला की तौहीद को बयान करने के बाद दूसरा फेवरेट टॉपिक जो है ना वो क़यामत है। 29वां पारा तो पूरे का पूरा इसी थीम पे है, लेकिन यहाँ हम इतनी बातें जो पढ़ी हैं जिसमें सिर्फ हमें एक अंदाज़ा हुआ है, अभी मैं इसका खुलासा कर देती हूँ। ये शुरू की 3 आयतें, और अगर सिर्फ बिस्मिल्लाह को मिला लें तो 4 आयतें, किसकी बातें हुई हैं? अल्लाह। किसके गुण गाए गए? किसकी खूबियों का जिक्र है? किसकी मलकियत? किसका तसरुफ? आधा दिन यही है, सूरह फातिहा आधी हो गई। रब की खूबियां, रब के गुण, इन 3 आयतों में आपको ये थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि जिस मालिक ने मुझे आपको पैदा किया उसका हम पर कब्जा कितना है। इंशाल्लाह अगला हिस्सा हम जब नवैया का नाबुदू से शुरू करेंगे, कोई मिस ना करें, यकीन करें। अगर आप सूरत फातिहा मिस कर गए ना, और अगर कुछ सुना और कुछ ना सुना, तो ताल्लुक टूट जाएगा अल्लाह से। अधूरे ताल्लुक के साथ कभी पूरी नेकी नहीं होती। अब आप सवाल जवाब कुछ भी जो आप चाहें करें, मैं इंशाल्लाह आपके साथ। तो 2-3 मिनट है हमारे पास क्लास पूरी होने में, कुछ बोलिए। बहुत कुछ सुना है आज आपने अपने रब के बारे में। जी माइक दीजिए प्लीज, करीब वाले बात करें। जी आप मरियम।
मैं सोच रही थी कि हम इतने, हमारे अल्लाह ताला इतने ही बड़ी जात अल्लाह ताला की, कि अगर मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांगूंगी, अल्लाह ताला की मत मांगूंगी, तो मैं आप भी सही بہت مطمئن ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے.
دیکھیے مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، 3 دفعہ یہ آیت قرآن میں، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا. جی نیکسٹ اکسا.
آج اللہ عبور پہ قدر پہ اتنا کچھ پتا چل کے جانا پہلے کبھی اتنا سوچا بھی نہیں ہے.
اب یہی 3 آیتیں جب آپ اگلی نماز میں پڑھیں گے تو وہی ہونی چاہیے جو پہلے تھی، کبھی بھی نہیں. جی نیکسٹ.
اللہ کے رحمان آنے پہ ہم سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی اور ہم ان کا صحیح شکر تک نہیں ادا کر سکتے.
آپ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ فیصلہ اچھا فیصلہ تھا کورس کرنے کا؟ بس یہ بات جا کے دوسروں کو بتائیں. ہر جگہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آتا ہے. ایسے ہی ایکسپیرینس بتاتی ہوں، چند دن پہلے ایسی میں نے کہا اپنے کچن کا ڈرا، تھوڑے سی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، زیادہ مسالے وغیرہ یوز نہیں کرتے، تو شوق میں کسی نے دیے تو میں ڈال رہی تھی، تو میں یوں اپنے ہاتھ پہ رکھ کے نا کبھی سونف کو گھور رہی تھی، کبھی زیرے کو، کبھی وہ موٹی الائچی کو. میں حیران تھی، ہر ایک کا خوشبو فرق، رنگ فرق، ٹیسٹ فرق. صرف ایک چھوٹا سا ڈرا جس میں گنتی کی نمک مرچ مسالے ہیں، وہی مجھے فارغ نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کو چھوڑوں. اور میں کہتی سبحان اللہ، ایک زیرہ ادھر کاؤنٹر پہ ایک یا دو تھا، تو میں نے اس کو بھی بڑے پیار سے اٹھا کے شیشی میں ڈالا کہ تجھے بھی مالک نے اتنے پیار سے پیدا کیا جتنے سے یہ باقی شیشی والوں کو کیا، تو تو کیوں بیکار چلا جائے؟
سارا شکر. تو مجھے کیا پتا چلا کہ میں نے شکر کو کے لیے کوئی وجہ نہیں ڈھونڈنی، میں نے شکر کو عادت بنا لینی. ساری تعریف سارے لفظ مجھے تو یہی پتا لگا ہے، ال کے لفظ سے مجھے یہ سارا پتا لگا کہ میں نے وجہ نہیں ڈھونڈنی شکر کے لیے.
بالکل، دیکھیے کوئی کرے نہ کرے اس کی پھر بھی تعریف ہے. جی اب آپ تلاوت سنیں صرف ان شروع کی آیتوں کی اور اس پہ غور کریں.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.